पृष्ठ संख्या 4। यानी नाटक में विचार या अनुभूति रहती है, पर वही नाटक को सार्थक नहीं बनाते। उसके पीछे अगर दर्शक की संकल्पना और रंगमंच की अवधारणा है, तभी वह विशिष्ट है। वस्तुतः कविता कहानी का नितांत वैधानिक होना फिर भी संभव है, लेकिन नाटक में वही घातक होगा। व्यापक संदर्भों, बाह्य परिवेश और वातावरण से जुड़कर नाटक एक समुदाय को प्रभावित या उत्तेजित कर सकता है। नाटक को हमारे यहाँ काव्य का ही एक प्रकार कहा गया है। कुछ लोगों के अनुसार काव्य में नाटक और नाटक में काव्य का होना स्वतः सिद्ध है। प्रसाद का साहित्य इसका उदाहरण है। यद्यपि कामायनी महाकाव्य में नाटकीयता जिस प्रकार काव्य की आंतरिक बुनावट में स्वतः समाई हुई है, उस तरह से देखें तो उनके नाटकों में काव्य प्रायः आरोपित लगता है। लेकिन फिर भी यह सत्य है कि जिस तरह कविता में बिंबों, प्रतीकों और ध्वनि संयोजन का महत्व है, उसी तरह नाटक में भी है। विलियम नाइट ने बिंबों को ही नाटक का कार्य व्यापार माना है, क्योंकि बिंब नाटक के निहितार्थ को सामने लाने में और पूरी रचना की बुनावट में सहायक होते हैं। प्रसाद ने नाटक में बिंबों के शक्ति को पहचाना ही नहीं, वरन अपने विविध प्रयोगों द्वारा प्रतिपादित भी किया। उन्हीं के संदर्भ में भुवनेश्वर ने नाटक में बिंबों, ध्वनियों, प्रतीकों के द्वारा भाषा की सूक्ष्म पकड़ का परिचय दिया, और फिर यह सतर्कता और शक्ति मोहन राकेश में बड़े पैमाने पर दिखाई दी। ऑथर मिलर और इलियट जैसे नाटककारों ने नाटक की बुनावट में काव्य तत्व को अनिवार्य ही नहीं माना, बल्कि कविता को नाटक का स्वाभाविक और सीधा माध्यम कहा। जो नाटककार कवि नहीं है, वह मानो पूरा नाटककार नहीं है। इसी आधार पर गद्य पद्य का अंतर केवल स्थूल अंतर है। एक से उपकरणों का उपयोग करने के कारण इन दोनों में कोई आवश्यक अंतर है ही नहीं। इसीलिए नेमीचंद्र जैन की यह बात बहुत संगत प्रतीत होती है कि श्रेष्ठ नाटक कविता के समान ही व्यंजना शक्ति का, बिंबमयता का, सघनता और तीव्रता का, संगीत और लय का, शब्द और अभिव्यक्ति की अनिवार्यता का उपयोग करता है। यही यह भी मानना होगा कि दृश्य काव्य अपने प्रचलित परंपरागत अर्थ में नहीं, अर्थात मंच भी दृश्य पदार्थ होने के कारण ही नहीं, बल्कि सशब्द रंगानुभूति से संपन्न नाटककार अपनी भाषा शक्ति और नाटकीय शब्द प्रयोगों द्वारा भी मंच पर दृश्य प्रतीति करा सकता है। मोहन राकेश से भी पहले भुवनेश्वर ने नाट्य भाषा की इस शक्ति को पहचाना था और सिद्ध कर दिया था कि नाटक कुछ घटनाओं, पात्रों, दृश्य बंधन, कार्य व्यापार की गतिशीलता, चरम सीमा से ही नहीं बनता, बल्कि उसकी भाषा में ही सारी क्रियाएं, सचेतनता, दृश्य प्रभाव सन्निहित हो सकते हैं, जो बड़े गहरे अनुशासन से पैदा हो सकते हैं। मोहन राकेश ने स्वयं नाटकीय शब्द की खोज करते करते नाट्य भाषा की शक्ति का अनुभव करते हुए ही रंगमंच को मूलतः श्रव्य माध्यम कहकर सर्वथा नई स्थापना पूरी तर्क दृष्टि के साथ की, जिस पर अलग अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है। संदर्भ 1, नटरंग अंक 3, पृष्ठ संख्या 2, संपादकीय।